कहे निरंजन सुरो हो ज्ञानी करो विनती मैं तो ही सू और जान बंधु ब्रहुद की नो घाट बही अब मोई सू। मैंने तो आपको एक भाई समझ कर कह दिया था, ये मेरे से गलती हुई घाट हुई। पुरुष सम अब तो ही जानो नहीं दूजी भावना और तुम बड़े सर्वज साहेब अक्षमा छत्र तनावना। के मैं ही भगवान समान समझू आपने सतपुरुष के समान। पुरुष दीनी जस राज मोहे तुम करो बख्शीस और ज्ञानी पुरुष सो एक समा सो डस में तू ईस। जो कह 16 के 16 में तो सबसे ज्यादा बड़ा भाई से और तुम प्रधान से और कृपा तेरे मर भगवान में कोई कमी नहीं से। यानी कबीर साहेब खुद सतपुरुष अपने बड़े पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर जो तीसरे नंबर का है उसका बना कर आए थे। धर्मदास असबिनती ठानी मैं सेवक दिवत्या ना जानी और ज्ञानी बिनती एक हमारा सो ना करिए हो मेरा बिगाड़ा। अब हम वचन तुम्हारा मानी ले जो हंसा हंसो ज्ञानी बिनती एक करो मैं तो से ताता वचन बंद मानो हमारी बात। नो बोला जी ना बसाई ना जब उसे ठाडा है नो बोला जी आप बेसक ले जियो कितने है? कोई बात ना आपने दे रखे आप ले जाओ हम के नाट से पर एक छोटा सा काम मेरा कर दियो अके भाई नो नहीं वचन भर लो। ये महाराज आप तो समर्थ छो। महाराज ने बोले भर लिया वचन बोल के चाहो। कहते हैं सतयुग त्रेता द्वापर माही और तीनों युग जीव थोड़े जाही। सतयुग त्रेता द्वापर में थोड़े जीव पार करियो महाराज और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो स्वर्ण जीव बहुत आवे। जब चौथा युग आवेगा जब ले जियो आप बेसिक अपना तो बिनती तोरी मान में लेनी में जानी और मोह को ठगे तन काल अभिमानी जस बिनती तू मोह संकीनी सो अब बख्श तो है मैं दीनी। के जो तनारज करी वो हमने दे दिया पर तनया करी गलती निकम्मे तो चूक्या भी मैंने उत्पन्न करण ते तो कहा है बंदी छोड़ कहते तीन युग में जीव हम कम ले जाओ से और ले भी के जाओ जब मन दे को नहीं है उसमें तो इतने योगी हो जाए हैं आम व्यक्ति की समाधि ऐसी चली जाती हो बहुत ऊंचे तक इतना सुख सतयुग में हो सह पूछो मत ना। फिर त्रेता में भी बहुत सुख रह से सुख हो पाछा जीव भगवान में जरूरत को ना चलता इसने फिर परमात्मा की। अब चौथे युग जब आवस है काल करड़ा हो रहा से आप देख लो आज से 50-40 साल पहले के बुढ़ों ने और उनके और 50-40 साल पाछे की बात पूछ लो उस समय कितना प्रेम आपस में होया करता दुखी में दुखी होया करते किसी बहन बेटी की शादी ब्याह होंदा और नो दिखता ना बेचारा गरीब से और यू दुख पा रहा से तो धनी आदमी साहूकार आदमी जाकर ने पूछा करता भाई घबराइए मत ना तेरी बेटी मन मेरी में कोई फर्क नहीं सह तेना जितने पैसे चाहिए मेरे पर ले लिए इतना कंधे सीढ़क सी हो जा अरीब ने सोचे से एक साल की बेजती हो जब मेरा पट कितने लाओगा 2 लाख रुपये। तो बात यह है उस समय में अरीब में कितना अंतर हो गया और फिर सतयुग लाखों वर्ष पाछे जाइयो कितना आनंद हुआ होगा। तो उस समय तो भाई कोई भी सतलोक जान की सोचे भी ना था भक्ति की ना सोचते ईब कितने भक्ति करते हैं अपने हरियाणा में देखियो और बड़ा क्यों रोहतक में देख लो जींद में देख लो गांव गांव में जाकर देखो जैको राम नाम का जिक्र भी होता होता सपने में भी और आपके पुण्य भाग से को सतगुरु की रजा हो रही से जो कि हमने 4-4 घंटे सारी सारी रात बोल बोल के या थोड़ी सी बात पर लगे रही है तो आपके और बंदी छोड़ की कृपा हुई से निरे ज्ञान ते भी कोई नहीं मानता ये तो घर में सो सो सुख बंदी छोड़ देश है जब इन्हों जचन लागी ठीक कैसे है ना तो यू समझो ना निंदा ऐसा कसूता है काल। धर्म राय अस विनती ठानी हाँ ये देखो कि तो बीड़ी शराब मांस तमाखू बकरे खान लग गए मांस खान लग गए जबकि हरियाणा में तो मांस का नाम भी नहीं था अब सब जगह खान लग गए पंडित भी खान लग गए छत्री जाट भी खान लग गए और फिर सिनेमा हो गया घर घर में टेप और रेडियो हो गए खूब मंड जाओ करेट फ्रीज हो गए और पूछ एयर कंडीशन बनाने लग गए कार होगी ना ची दे ही करके लकड़ जाए तो काल ने राजी कर रखे लगे रहो पहले आपदाएं ज्यादा आकर थी भगवान ज्यादा याद किया करते थे इब आपदाएं कम होगी ईश्वर ने भूल गए और सुख सुविधा तकरीबन सबका होगी छोटी छोटी जिसने समझ से। चौथा युग जब कलयुग आवे तब हम अपना अंश पठावे सत सबते जिन्हें परवाना जिही परवाना दे है सत सबद दे हाथ सो जीव यम नहीं पावे और सदा ताही हम साथ के जिसके पास सार शब्द होगा उसके पास हम साथ रहेंगे हरदम। आपको यहाँ की कई कहानियां बता दूं जिसमें बंदी छोड़ने साथ खड़े होकर के काम न काट लाए हैं, काल के मुंह मत बचा दिया हमारे बच्चों को। तो महाराज कहें जिसके पास सतनाम सतभावना होगी हमारे संत के प्रति मेरे प्रति, तो मैं उस जीव को के साथ रहूंगा। अब कहता है काल के महाराज जी वो शब्द बनना बता दो ताकि जिसके पास होगा ना मैं उसमें छेड़ूंगा कौन ना, बंदी छोड़ने बोले सा बावड़ा कौन ही मैं, ये भी और तेरा अखली दाव से नो बोला ही बना यू ना बताऊ तेने बतेरा ठग लिया। नो बोला जिस दौर होगा ना मैं उन्हें छेड़ूंगा कौन ना, उसके नजदीक तू जा ही नहीं सकता, हमने बताने की आवश्यकता नहीं, इतना आप बेरा पट जाएगा कि इसके पास सार सबता उस तू आप दूर पड़ेगा जाके। तो जो ते देह कहे जय तो देहू संधि लखाई और जीवा काज होवे दुखदाई, तब तो परपंच ज्ञान जान हम पावा और काल चले ना इब तेरा दावा। तेरे परपंच ने मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ, काल इब तेरी नहीं बसावगी। धर्मदास ते प्रगट बाख्या अंक धर्म राय तो प्रगट बाख्या गुप्त अंक बीड़ा हम रख्या। वो गुप्त बीड़ा सार शब्द गुप्त हमने अपने पास रखा है, वो भी युग में एक आद के पास होगा जो कि सही भाव से बताओगा, और जब सही तत्व नहीं हो लेगा इतने उस शब्द के बताने का भी कोई लाभ नहीं होता। जय कोई ले है नाम हमारा अरते ही छोड़ तुम हो जा नारा, जो तुम हंस को रोक को जाई तो तू काल रह नहीं पाई। बंदी छोड़ के जय तने फिर उस हंस को छेड़ दिया तने काट दूंगा पहले, बंदी छोड़ने ठोक के कहे जय तू हंस जे तू हंस रोक को जाई उस हंस को जिसके पास सार शब्द है तो तुम काल रह नहीं पावे। ये तो ख्यास करके देख लिया। अब काल के कहे हे साहेब तुम पंथ चलाओ और जीव उभार लोक ले जाओ, एक पंथ तुम आप चलाओ और जीवों को सतलेक सतलोक पठाओ, दयावंत तुम साहेब दाता इति कृपा करो हे ताता। क्या के पुरुष साप मोह को अस दीन्हा और लाख जीव नित लक्ष ग्रासन कीन्हा, और जीवों को सतलोक ले जा सकल तुम मुक्ताओ तो कैसे अक्षुद्धा मेरी बुताओ, जे सारे चले गए तो मेरा पेट क्यों कर भरेगा। तो महाराज कहते हैं के काल ने बोला मैं जान नहीं दो जिसे मरज किम में करना पड़ियो, आप ले जाके देखियो। ने बोला भाई जिसके पास मेरा नाम होगा उसने तो छेड़ नहीं सकता। ने बोला आपका नाम को ले वह भी मैं लेन भी दो, क्यों नहीं लेन दे के एक पंथ तुम आप चलाओ और तेरे नाम तब मैं 12 पंथ चला दूंगा नकली। आपकी बाणी का करेंगे अरने बता करेंगे काल न्यूस है सतलोक न्यूस है अगम लोक न्यूस है, हैं पर नाम वो नहीं देंगे जो कि उस सही से। तो आज देख लो आप किसी पंथ में चले जाइए सारी कबीर साहब को प्रधान मानते हैं, कबीर साहब से पहले कोई सतलोक ने जाना भी नहीं था और उसी के ऊपर पंथ चल रहे हैं पर नाम यो नहीं है जो बंदी छोड़कर से। तो काल के एजेंट बताए कबीर साहब ने द्वादश पंथ करूं मैं साजा 12 पंथ चला दूंगा काल ने कैसे, और नाम तुम्हारा ले करो आवाजा तेरी बाणी का रूके मारा करूंगा बड़ी बड़ी स्टेज ला के। देखो कबीर साहब ने कैसे एक पंथ देखा हमने, नाम तो हम नहीं लेते, उसके अंदर खुला कह रखा उस कैसेट में उस संत ने, कहते हैं कि राधा स्वामी नाम से मुक्ति हो जाएगी क्यों करे, कबीर साहब ये नाम जपा करते थे। वह कैसेट हमने खुद सुनी है और नाम लेने में भी क्या दिक्कत से संत तारा चंद दिनोदाड़े की वह तो कैसे टेम रुका मार रखा जब हम के उसमें लगवाएंगे, उसमें लिख रखा है के यू है सार नाम से राधा स्वामी शब्द जो है, और मैं एक नाम देता हूँ स्वामी जी कहते हैं ताराचंद जी के एक नाम देता हूँ राधा स्वामी कदे किसी का धोखा रह जाए। वो कैसेट में साफ कह रखा हमने गुराने सुनी, तो उसमें लिख रखा है कि यही सार नाम से और यू है सार शब्द से चुकर से कि कबीर साहब ने यू जप्या और भाई मीरा बाई ने यू जप्या और सारे संतों का प्रमाण दे रखा। तो प्रमाण क्या दिया कि उसमें एक दोहा आवे से दादू साहब का कि सतगुर धारा अगम की दादू धारा अगम की सतगुर देई बता और ताहे उलट सुमरण करे बला स्वामी संग मिल जा। इसमें कहते हैं वो गुप्त भेद छुपा रखा क्यों करे कि दादू धारा धारा का तरह दा कर लो धारा का बला राधा कर लो और स्वामी स्वामी सहे बला उस तरह मिला लो दोनों का राधा स्वामी हो गया तोड़ पाड़ रखा गति नौके रात दारा का तरा दा हो गया उल्टता ही सुमरण करे और बोला स्वामी संग मिल जा अले राधा स्वामी हो गया। तो इस प्रकार बंदी छोड़ कहते हैं कि द्वादश पंथ करूं मैं साजा नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा द्वादश यम संसार पठाऊं 12 मेरे दूत भेज दूंगा और नाम तुम्हारा पंथ चलावे प्रथम दूत मम प्रगट जाई पीछे अंश तुम्हारा आई। इब अमारात बंदी छोड़का तीब चल रहा है यो पंथ यथार्थ समझ लो हरियाणा में और इस तो पहले तो सारी कार्ड रखी आत्मा को किस पंथ में 500 टोल के टोल पावे उड़े ले रहा हम तो नाम ले रो भी मारे के बसावे फिर सुन कह रहा जी नहीं सारे घंट गया खूब खागड़ पहले कर दिया काम। इब हमारे पास भी बंदी छोड़ की वो हंस आत्मा जो कति असली आत्माएं थी वो छट छटकान लाग रही से जो पिछले जन्मों से लगी हुई यहाँ साफ लिख रखा कि प्रथम दूत मम प्रगटे जाई पहले मेरा दूत जा लेगा वहां पर और पाछ अंश तुम्हारा जाई पीछे थारा आवगा इतने तक छट्टे को बरोड़ी भर लिया पैसे पाछा फटा हुआ नहीं सारे काट लूंगा। अरे एक बार फीत ला दी भाई नाम ले ले किससे गुरु तय पार से सोदा बस नाम गुरु गुरु एक नाम एक पंथ एक रास्ता एक जाना उड़े से फिर वो बोला नाम किम में हो बात तो वह है गुरु चाहे कुछ भी दे दे या भी क्यों बात हो बीज तो वही रहेगा किसी चीज का भी बोना है तो वही बीज लेना पड़ेगा वही बोगा। कहा तुम्हारा जीव ना माने हमारी और यह विद जीवा को भरमाऊ पुरुष नाम जीवन समझाऊ और द्वादश पंथ जीव जो ले ही सो हमरे मुख आन समय ही उन द्वादश पंथों में उन 12 पंथों में जो नाम लेगा वो मेरे मुंह में आओगा बार जा नहीं सकता। कहा तुम्हारा जीव नी माने अमरी ओर हो बाद बिखाने और मारी ओर होके फिर वकील बनेंगे थारी गेला देखिए जाके एक बार नहीं बने से किसी ने छेड़ ले 36 सुना जाएगा हमने बात बुढ़ी बुढ़ी नो लिख रखा उसमें नो लिख रखा ठीक से भाई बढ़िया लिख रखा तो सही लिख तो रखा ये इसमें कह सकते हैं। कहते हमारी होर हो बाद बखाने यानी बाद विवाद करेंगे मैं दृढ़ फंदा रची बनाई अर्जा में जीव रहे उड़ जाई करड़े फंदे गाड रखे से जीवा के छूट नहीं सकते। देवल देव पाषाण पुजाई देवल मंदिर देव देवता और पत्थर की मूर्ति की पूजा कला रखे से और तीर्थ व्रत जब तप बन लाई तीर्थ व्रता मुड़ जा रखे लगे रो यम यज्ञ होम और नेम अचारा और अनेक फंद में डारा हो ज्ञानी जाहो संसारा जीव न मान कहा तुम्हारा। यह भी सत वचन से के परमात्मा बंदी छोड़ की बात को प्रथम तो कबीर साहब को भगवान स्वीकार नहीं करते और ज्ञान ने तो बहुत बारी स्वीकार करेंगे ज्ञान भी टेढ़ा कति उलट सारी चीज जो ज्ञानी तुम जाहो संसारा जीव न मान कहा तुम्हारा और ज्ञानी कहे सुनो अन्यायी बंदी छोड़ कहते रे अन्यायी और काटो फंद जीव ले जाई जिन जेतिक फंद तुम रचे बिचारी उस सत शब्द सभी बिडारी उस नाम ते पटापट कट जाएंगे सारे जौन जीव हम शब्द दृढ़ावे और फंद तुम्हारा सकल मुकावे जिसको हमारा सच्चा नाम मिल जाएगा वो सार नाम मिल जाएगा तेरे सारे फंद कट जाएंगे। चौका कर परवा ना पाई और पुरुष नाम ते देऊ चनाही ताके निकट काल नहीं आवे और संधि देख ताको शरण आवे उस नाम को देख कर सार नाम की जो संधि है उसको देख करके तू शरण झुकावेगा। फिर काल कहता है कह धर्मराय जाओ संसारा और लियाओ जीव नाम आधारा जो हंसा तुम्हरा गुण गाई ताके निकट हम नहीं जाई। काल ने बोला जो आपके गीत गावेगा आपकी शरण में रहेगा आपका नाम जपता है फिर उसको हम नहीं छेड़ेंगे। जो कोई जय है शरण तुम्हारा और हम सिर पग दे हो जा पारा वहां काल का आखिरी लोक से निरंजन लोक झांझरी दीप वहां पर खुद काल बैठे है और जिसके पास ये सार शब्द है उसके लिए राख खोल दे है नहीं तो वहां पर कति जाम कर रखे हम तो तुम संकीर्णी डिठाई और पिता जान की नहीं लड़काई फिर चापलूसी चाल से जो का मन तो बालक समझ के आप पिता के समान समझ के आपके साथ बालकपना कर दिया और आप काली ना मानियो बेसक ले जियो महाराज जी आपके जीवन में नहीं छेड़ूंगा जब इन जचगी पर बसाओ तो तेरी हाथे नहीं शब्द का आगे इब अपने न्यो राजी कर लिया इसने बंदी छोड़ने तो इब एक और दो तीन काम रह गए वो करवाने थे क्या ये जानते सुन की बात है सारी एक एक जो पिता बालक देहे निकारी तब को रक्षा करे हमारी हाँ कहता मन गलती कर दी और आप पिता समान सो, देखो पिता सो सो गलतियां माफ करा रहे पुत्र की ने, और तुम मेरी नहीं रक्षा करोगे तो मेरी कौन करेगा, अरे मैं तो एकला सु महाराज थारे बिना, हम तो तुम संग की नहीं डिठाई, गलती कर दी अंगाही कर दी मैंने आपकी गिल्ला, और पिता जान की नहीं लड़काई, आपको बाप समझ कर मैंने या थोड़ी बात उल्टी सुलटी कह दी, तो आप तो पिता हो कि कोटिन अवगन बालक कर ही करोड़ गलतियां बालक कर दे, और तो भी पिता हृदय नहीं धर ही, तो भी बाप जो उसकी गलतियां ने सीरियसली नहीं लेता, तो जो पिता बालक देहे निकारी तो तब कौन रक्षा करे हमारी। तो बंदी छोड़ कहते हैं, धर्म राय उठ शीश निवायो तब हम संसार सिधायो, जब हम देखा धर्म सकाना तब वहां पहुंचे तब वहां कीना हम कीन पियाना, यह कह कबीर सुन धर्म नि नागर तब हम चल आए बहु सागर। अच्छा, इससे पहले काल में एक प्रार्थना करी सतगुरु महाराज तक, हे बंदी छोड़ आप जा रहे सो संसार सागर में, एक दो काम और कर दियो। अब क्या भाई, एक तो यह है कि जब मेरा अंश त्रेता युग में जावेगा तो रावण को मारने के लिए लंका पर पुल बांधेगा, वो पुल नहीं बंधेगा, कृपा आप रक्षा करियो किसी रूप में करियो महाराज, आप उसको बंधवा दियो, समुद्र नहीं बंधन देगा। जो बोला चल यात्रा बात मैं कर दूंगा। दूसरा यह है कि जगन्नाथ में मेरा अंश अवतार कृष्ण जावेगा बौद्ध रूप में, और जब वो वहां पर जगन्नाथ का मंदिर बनवावेगा समुन्द्र नहीं बन देगा, क्योंकि वहां पर राम से उसकी दुश्मनी हो जाएगी जब पुल बांधेगा। एक जगन्नाथ का मंदिर और बनवा दियो बंदी छोड़, अच्छा यो भी बनवा दूंगा बंदी छोड़ना, वह दो भी यहां पर लिख चल ये भी कर देंगे तेरे, ये बालक कितना लड़ देगा, ले फिर भी बाप ने कहा एक मैं सोर लूंगा, ले ले डूब ले बेटी के बाप तो क्या करेगा। हाँ तो यही है मतलब, बंदी छोड़ इतने दयालु और समर्थ भी तो हैं। अब कहते हैं उसके बाद मैं धर्मदास सीधा उसके पास आया धर्माधोर। अब ध्यान तो सुनिए इन बातों को, जो ना सोचियो का मुंह रुके मारे माइक में लाक कहां सा को सच्चाई के साथ कहते हैं, इनमें यथार्थता है। अरिवेदों के अंदर आपको दिखाएंगे बंदी छोड़ की वाणी, बंदी छोड़ की महिमा कबीर साहिब की, जो वेद तो यथार्थ यहाँ का ज्ञान से तीन लोक का कहते हैं। फिर आया हम इसके पास धर्माधोर आए, धर्मा को आकर हमने समझाया, भाई ये जो तुम साधना कर रहे हो यो भगवान नहीं है, ये तो तुम्हें उड़ जाकर बैठा है ब्रह्मा जी, ये निरंजन काल से इसने 100,000 जीव रोज खाने से, भाई तू खाम का खूब बात कर रहा है, तू बनावे से विष्णु जी पाला से शंकर भगवान मार दिया है, बताइए के खेल खेल रहे हो तुम। तो कहते हैं उसने बहुत चेष्टा करी इस बात के ऊपर, बहुत विचार किया ब्रह्मा जी ने, कहने लगा जी कोई और भी परमात्मा है, कि परमात्मा तो और ऐसे यो तो खागड़ हो रहा है छूट रहा है, इसने तो अपने स्वार्थवश यहाँ पर जीव उड़जा रखे, 100,000 जीव यू काल खावस है, अरे तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश इनका पालन पोषण करे हैं, एक बना दे एक पाल दे एक मार दे और काल के मुंह में चले जा, बता भले पुरुष वो बालक वो जवान आदम जिसका लड़का मर जा से वो क्यों करो से वो आत्मा तन बेरा से, कहा जी दुख तो हमने भी बहुत हो से पर हमारी कुछ नहीं बसांदी उनके कर्म से। तेने बोला भले पुरुष ये कर्म कौन लगावे, कि मन से जीवो वो किसे काबू का नहीं खागड़ो बिराना की तारा, कि वो निरंजन है खुद ये काल है खुद, और इस ब्रह्मा निरंजन से ऊपर एक शक्ति और से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। बहुत पूछा अक जी क्यों कृपा है, तो महाराज ने उसको कहा कि तुम इस ओम नाम का जाप डट कर करा कर, फिर मैं तुझे एक नाम और दूंगा इसके ऊपर है, बंदी छोड़ भी नो देखे है ना यू जच ले जब दू इसको नाम। तो कहते हैं इतने में निरंजन ने पता चला कि तेरा जेठा पुत्र बंदी छोड़ का हाथ जान लाग रहा पढ़न लाग रहा से, उसी समय उसकी बुद्धि माँ बैठा ने बोला छोड़ महाराज जी आप द्वारा कुछ नहीं ज्ञान है, वेदांत न्यार आप कहां से लाओगे, वेद ही श्रेष्ठ ज्ञान है, इसमें कितना जिक्र नहीं उस और शक्ति का। अले कहे जब बुद्धि फेर दी और ब्रह्मा सुने को नहीं ने हम चाले बा चल ठीक से काला बैठा इसकी बुद्धि में भी के करूं। कहते हैं कहे धर्मराय सुनो धर्मराय उठ शीश निवायो तब हम संसार सिधाओ, फिर उसने मेरे पांव पकड़ लिए निरंजन ने, मैं वहां से चला संसार माया, कैसे जब हम देखा धर्म सकाना तब हम तुहा किन्हा पे आना, कह कबीर सुन धर्मनी नागर तब हम चल आए बहु सागर आए चतुरानन के पासा तासो कीन्या शब्द प्रकाशा। चतुरानन चार मुखों वाले ब्रह्मा के पास आया, ब्रह्मा जी से मिले, तब आए चतुरानन के पासा अर्तासो कीन्या शब्द प्रकाशा, उससे यथार्थ ज्ञान प्रकाश किया, उस शब्द बताना चाहा। तब ही निरंजन कीन उपायी अर ज्येष्ठ पुत्र मेरा ब्रह्मा जाई, के जेठा बेटा मेरा जागा अर यु तड़ा पैट जागा, यू तो सारे खेल खेल लगा मेरे, अर यू भी इसके हाथ में लाग गया ना, पहले मेरा काम बिगड़ गया। निरंजन मन घट आन बिराजय अर ब्रह्मा बुद्धि फेर उपराज, ब्रह्मा की बुद्धि फेर दी और वो फिर उल्ट सुलट लाग गया बोलने। तो ब्रह्मा के बोला के निरंकार निर्गुण अविनाशी ज्योत स्वरूपी सुन के बासी, ताही पुरुष को वेद बखाने और वेद ज्ञान ते हम जाने, और जब देखा ते काल दृढ़ायो ता से उठ विष्णु पायो। तुमने देख लिया नहीं भी कमा काला बैठा, उसके बाद कबीर साहब कहते हैं मैं विष्णु के पास आया। विष्णु से कहो पुरुष उपदेशा और काल वश नहीं गयो संदेशा, पहले मैंने उसको कहा विष्णु, ब्रह्मा ने विष्णु ने भी बहुत अच्छी तरह बात पूछी क्योंकि सतोगुणी है बहुत प्रेम से। तो हमने कहा भाई तुम नाम ले लो हमारे से, आपको यथार्थ वस्तु प्राप्त हो जाएगी। कहने लगा कि कैसा नाम होता है, कि हरियम जाप जप्या करो आप। बोला अच्छा जी ठीक है जी गुरुजी, हरियम जाप जप्या करेंगे। फिर वो लागे ना बंदी छोड़ने को, भाई इस तो ऊपर और सर न्यू सर ने बोला ना या हम नहीं मानते, ले ठीक है भाई मत ना माने। कहने लगे इसका जाप करो हम फिर आपको एक असली नाम बताएंगे। विष्णु से कहो उपदेशा और काल वस नहीं गहो संदेशा, कहे विष्णु मौसम को आही, काल उसकी गुद्दी माँ बैठा विष्णु की में, कहते मेरे समान कोई नहीं है और चार पदार्थ मेरे पास है, अर्थ धर्म का मोक्ष और जिसने चाहे सो दे दूं, मेरे से बराबर कोई नहीं है। कहे विष्णु मौसम को आही, चार पदार्थ हमसे पाही, काम मोक्ष और धर्मार्थ माही, और चाहे दे हूं जो चाहे मैं दे हूं ताही, जिस पर मेरी इच्छा हो उसको मैं ये नाम चारों पदार्थ दे सकता हूं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो बंदी छोड़ने बोले कि आप भी मुक्त नहीं हो सकते, तुम काहे के जीवों को मुक्त कराओगे भाई, जब कहते हैं सात ब्रह्मा मर जाएंगे जब एक विष्णु मरेगा, आप कहां मुक्त होगे फिर। फिर वो नबी थोड़ी सी हरकत से आई, वो बात तो ठीक हो, फिर देखा कि जी तो सब मरना जीना तो लग्या ही रहा, सब मरेंगे हम भी किनारे मरण से, ताड़ा भी सब नए बंदे बैठे हैं, अब भी तो मरना जीना सब को लाग रहा से। और बंदी छोड़ कबीर साहब के मैं तुमने मरण जीण तो पांडा छुटवाण लाग रहा तुम्हारा भाई, और सतलोक ले चल लो जहां पर कभी जन्मना न मरना, और बढ़िया शरीर खूब ऐस ये बच्चे खूब ठाठ से रहोगे, वहां पर खान पान न्यारा सुथरी व्यवस्था, तुम वहां क्यों नहीं चलना चाहते, इतनी बुद्धि क्यों खराब कर ली। फिर कहते हम गए शेष नाग के पास, अब उसको भी समझाया लेकिन वो तो कतई नहीं माना। कहते हैं तब पुन गए नागलोक चल आओ, तासे कहो कुछ काहे को लाओ, पुरुष भेद कहो जानत ना को जानत नाही, और लागे सकल सभे काल की छाई। बंदी छोड़ कहे के बंदी छोड़ के नाम ने सतपुरुष के नाम ने कोई नहीं जानता, और सभी काल की छा में यानी काल की माया की वश होकर और चिपटे हुए से रख निहार और चिन्ह भाई यम सो तो को हाँ शेष देख निहार चिन्हो भाई यम से तो को मैं लेऊं छुड़ाई। शेष नाग ने बोले तेरे को काल से छुटवा दूंगा। जैसा कि आपने सुना कि बंदी छोड़ सतपुरुष ज्ञानी जोगजीत सहजदास मुनिंदर करुणामय सत्सुकृत और कबीर नामों से कई बार संसार में प्रगट हुए अपनी कृपा से अपनी रजा से। तो बंदी छोड़ने बताया कि जब हम सतलोक से आते हैं अपने पुण्य आत्माओं को जीवों को काल से छुटवाने के लिए, तो सर्वप्रथम निरंजन का लोक आवा है, और निरंजन के लोक में निरंजन किसी को पर भी नहीं मारने देता, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा भेद किसी को ना लग जावे। वो यहां संसार की दृष्टि में निराकार है, निर्गुण है। तो बंदी छोड़ जब आए तो सबसे पहले निरंजन के साथ उनकी कहा सुनी हुई। निरंजन हार मान गया। आखिर में उनको नीचे आने का नीचे आने का रास्ता दे दिया संसार सागर में। तो बंदी छोड़ ने बताया, अपने सुना कि प्रथम बंदी छोड़ कबीर साहब सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म अपना तेज पुंज का शरीर बनाकर शब्द स्वरूपी शरीर बनाकर और ब्रह्मा के पास एक संत रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने महाराज की बात सुनी, नाम लिया, लेकिन कुछ समय के बाद ही काल ने उसकी बुद्धि को बदल दिया। उसके बाद विष्णु जी के पास आए। विष्णु जी ने भी सतगुरु के ज्ञान को बड़ी रुचि से सुना, लेकिन काल फिर उसमें प्रकट हो गया, उसके घट में आविराजा और फिर उस निरंजन विष्णु को भी कह दिया। विष्णु के मन में भी आ बैठा काल, खुद मन काल तो है ही पर प्रभावी कर दिया। कहने लगा कि मेरे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, तीन लोग के हम मालिक प्रधान हैं। उसके बाद कहते हैं बंदी छोड़ के मैं शेष नाग के पास गया। शेष नाग ने विष प्रभावी होने की वजह से मेरी बात को सुना जरूर, पर इतनी रुचि से नहीं सुना। उसके बाद हम आए शिव भगवान के पास, शंकर भगवान के पास, महादेव के पास। उन्होंने विशेष उचित आदर किया। मैंने उनको बहुत कुछ साधना बताई, सतपुरुष के चिन्ह बताए, तो उन्होंने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना और मेरे से उपदेश लिया। उपदेश लिया तो उसको हमने सोहम मंत्र दिया। शंकर भगवान को कबीर साहब कहते हैं कि मैंने उनको सोहम मंत्र दिया, उसने मेरे को विशेष आदर दिया। उसके बाद फिर मैंने बताया कि आपको एक नाम और दूंगा जिसको सार नाम कहते हैं, इसका आप ध्यान से जाप कीजिए, क्योंकि शंकर भगवान पहले ही इतने व्यवस्थित हो चुके थे, अपने समाधिस्थ होकर अंतःकरण को साफ कर चुके थे, उसको ओम नाम की आवश्यकता नहीं थी। कहते इस सोहम के ऊपर आपको एक मंत्र और है जिसको सार नाम कहते हैं, वो फिर दूंगा जब मैं आपको उचित समझूंगा। उसके बाद कहते हैं कि कुछ समय के बाद उनकी समाधि सतगुरु की कृपा से और ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचनी शुरू होगी। तो शिव भगवान ने सोचा कि तेरे समान कोई सृष्टि के अंदर नहीं है समाधिस्थ होने वाला योगी पुरुष। सतगुरु महाराज दोबारा जाते हैं तो शिव भगवान कहते हैं कि हमने कहीं भी इस बात की जानकारी नहीं हुई, ना किसी वेद से, ना किसी शास्त्र से, ना किसी ऋषि से, और हमारे से ज्यादा कोई योगी भी नहीं हो सकता जो कि समाधिस्थ हो सके, ऊपर समाधि पहुंचा सके। आप महाराज ठीक कह रहे हो, आप संत होने के नाते कबीर साहब मैं आपकी बात को मना नहीं करता, लेकिन अविश्वसनीय बात है। सतगुरु महाराज कहते हैं कि हमने फिर ज्यादा उनको नहीं कहा। देखा कि काल इनको छोड़ नहीं रहा, बहुत जकड़ रखा है जीव को, तो कहते हैं मैं नीचे अपने मृत मंडल में आया और शंकर भगवान आज भी मेरी साधना उस नाम के अनुसार कर रहा है। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। श्याम वेद के अंदर 108 श्लोक हैं, आप पढ़ के देखिए, अगर किसी ने ना पढ़ा हो तो किसी का बैम हो तो। पार्वती जी वो शक्ति पूछती है सती जी शंकर भगवान से कि आप किसका नाम लेते हो, आपका उपास्य ईष्ट कौन है, आपका आप किसका ध्यान धरते हो, तो उसमें लिखा है उन्होंने 108 दोहों के द्वारा कि मैं उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहब का ध्यान धर रहा हूं, वो मेरा उपास्य इष्ट है। 108 श्लोकों में पार्वती प्रश्न करैसे और शास्त्र सबसे श्रेष्ठ शास्त्र हैं, यानी तीन लोक के प्रमाणित शास्त्र हैं, इनको झूठ नहीं कहा जा सकता। अब कहते हैं बंदी छोड़ के वहां से आकर के नीचे आता हूं। सुन सुलक्षण धर्मनी नागर धर्मदास एक लाला जी थे, बहुत प्रेमी, बहुत पुण्यात्मा, जो सतगुरु महाराज की शरण में बड़ी मुश्किल से आए थे, क्योंकि पहले तो वो भी इन तीन लोग के उपासना में आरूढ़ थे, कट्टर उपासक थे। बंदी छोड़ ने उसकी बुद्धि को ठीक किया अपने ज्ञान के प्रभाव से। उसके बाद वो बंदी छोड़ के परमहंस हुए। तो कहते हैं धर्मदास, सुनो सुलक्षण धर्मनी नागर, तब मैं आ गया भव सागर आगे तब मृतमंडल माही, और भाई पुरुष जीव कोई देखा नाही। यहां जब मैं आया धर्मदास
पर मैंने कोई भी सतपुरुष का प्यारा हंस नहीं पाया, क्योंकि जिसको ये ज्ञान हो कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ओर से, कोई ब्रह्मा को मालिक माने, कोई विष्णु जी को भगवान कहे, कोई शंकर जी की उपासना में लौलीन हो रहा था, मैं उनसे बात कहूं मेरे सिर पर आवे, मुझे अच्छी मंदी बात कहें, ये भोले भाड़े जीव, मुझे बड़ा दुख भी आवे कि देख काल तन चाड़े कर रखे, आप भगवान बन बैठा और असली परमात्मा को छुपा दिया। किसको कहिए पुरुष उपदेशा, अरसो तो अधिको यम को भेसा, अब किसने कहूं वो ज्ञान जो इस बात ने सुन ले, वह सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म की ने, या तो सब काल का भेष है, सब काल की व्यवस्था है, जो घाती ताको विश्वासा और जो रख सकता ही बोलने उदासा, ये भोली भाली आत्मा के जो घातक है, जो तू इनको मार के खाता है उस पर तो विश्वास कर रखा, और मैं बचान के लिए आता हूं, इनको यहां से छुटवान के लिए आऊं सू, और मेरे साथ ये रहे उदासा, काल ने इसी चाबी बर रखी है कि यह बात नहीं सुन ले जो यू कैसे ये गलत सारी झूठ से, जाही जपे सो जीव दरखाई और तब मम शब्द चेत चित आई, जिसको जपे उस वही तो इनको धर कर खाता है, और तब मम शब्द चेत नहीं आई, और मेरे शब्द की इनको ज्ञान नहीं बेचारों को, जीव मोहे मोहवश चिन्ह नाही तब असभाव उपजी ही माही। बंदी छोड़ कबीर साहब कहते हैं कि मोह के वश ये जीव मेरी बात को नहीं समझ पाए, फिर मेरे मन में ईसा आया कि इस काल के 21 ब्रह्मंड का आग लगा दूं, इसने कति खत्म कर दूं और अपने जीवों को सबको ले जाऊं। कहते मोह वश जीव मोह वश चीने नाही, मुझे पिछाण नहीं पाए, और तब असभाव उपजी ही माही, तब मेरे हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न हुई क्या कि मेट डारूं काल साखा और प्रगट काल दिखाऊं, इस सारे ढमढमे ने खत्म करके और 21 ब्रह्मंड तक को और काल ने पकड़ के इन जीवों को दिखाऊं कि यू सब वो दुष्ट आत्मा जो तुमने बांधे बैठा है, मेट डारूं काल साखा प्रगट काल दिखाऊं और लेऊं जीवों को छोड़वा यमसो अमर लोक पठाव हूं। फिर के कहे जही कारण रटत डोलो सो नहीं मोह कै ची नहीं, यही कारण मैं फिरत डोलू जिन जीवों के लिए मैं घर घर घूम रहा हूं, ये मेरी बात न सुनते तक नहीं, और न्यू का नहीं वेद में न्यू लिख रखा, गीता ये बतावे महाभारत में ऐसा लिखा है, 18 पुराणों के प्रमाण देते हैं, अरे भले पुरुषो ये सब के सब काल व्यवस्था के हैं, तुम समझ नहीं पाए इस बात को। बंदी छोड़ गरीबदास जी का क्या आवश्यकता थी उन्होंने अलग से ग्रंथ लिखने की, वो भी कह जाते कि गीता श्रेष्ठ है, इसी का ज्ञान बहुत है, उससे डारा ज्ञान कहां से लाएंगे, लेकिन उन्होंने गीता भी लिखी, रामायण भी लिखी, महाभारत भी लिखी जो लाखों वर्ष पहले की थी, और साथ में वेद भी लिखे, पुराण भी लिखे, शास्त्र भी उनका सार लिखा इनके अंदर, ये न्यू लिखे कि उनको प्रमाणित किया कि कहीं इन्होंने ना सोचे गरीबदास तो एक साधारण सा जाट था, इसने क्या का नहीं बेरा था, इस बंदी छोड़ने उस भ्रम को दूर करने के लिए कि कल ने न्यो कहेंगे तो अनपढ़ था, उस अनपढ़ ने और वो पढ़े लिखों के जो कि शास्त्र और संस्कृत विद लोग थे उनके उनके सामने जो उन्होंने याद था जो ग्रंथों में लिखा हुआ था वो भी ग्रंथ साहिब में लिख रखा, और फिर उससे न्यारी वो लिखी आगे की कहानी सतलोक की जो कि इन शास्त्रों में नहीं थी। तो इस बात से हमारा पक्का विश्वास हुआ जब बंदी छोड़ने लाख वर्ष पहले की रामायण और महाभारत लिख सकते हैं और वह ज्यों की तो उन शास्त्रों में मिलती है तो आगे की जो सतलोक की बात भी सत्य है। तो यहां कहते हैं कि यही कारण मैं रम्मत डोलो सो नहीं मोके चीन ही और काल के वश पड़ कर जीव और तजे सुधा सो विष पी वही, ये काल के वश होकर ये जीवात्मा अमृत को छोड़कर तज सुधा विष पी वही और जहर पी रहे से कितनी बार मर लिए, असंखों बार कुत्ते बनाए इस काल ने, असंखों बार गधे और गधी बनाया हमारे को, और फिर हम पढ़ते हैं हम उसी का ज्ञान और उसी की चर्चा के अंदर लौलीन होकर के मर जाते हैं, फिर कुत्ते और गधे की जुनियम चले जाते हैं। काल की व्यवस्था 3 लोक 21 ब्रह्मंड तक, जैसे कर्म जीव करेगा वैसे फल भोगने पड़ेंगे, ये गीता जी का सर्वोत्तम ज्ञान है और बिल्कुल सत्य है। बंदी छोड़ भी यही कहते हैं कि पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे, तो ऐसा क्यों ना करें जो कि यहां काल से छुट जावे, हम इन तीन लोक में बहुत काम है कोना, ऐसी व्यवस्था कर लीजिए, वो भी कर्म है, वो भी आपका अपना किया होगा। उसकी अनुसार आप जाओगे सतलोक में और इस कर्ण अनुसार आप जाओगे स्वर्ग में, स्वर्ग में अपने किए हुए का भोग भोग के वापस नरक में, नरक से फिर लख 84 में, ये ऐसे रहट के कुएं की तरह तुम घूमते रहोगे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं ये रहट का कुआ लोई के यहां भक्ति करी, भक्ति के साथ साथ तीन लोक की व्यवस्था में खोटे कर्म भी पहले बन जाते हैं, वो भी भोगने। तीर्थ पर जाते हैं, अभी आपको सुनाएंगे आगे धर्मदास का वर्णन कि किस ढंग से इस जीव को उलझा रखा है धर्मदास, ये समझ नहीं पांदा बेचारा। इन भोली भाली आत्माओं को उसी शास्त्रों के जानने वाले जिन्होंने बेचारों ने ज्ञान ही नहीं के बंदी छोड़ से तीन लोक के शास्त्रों से ऊपर भी कोई शक्ति है, वो इन्हीं शास्त्रों का प्रमाण दे करके इन भोली आत्माओं को अपना ज्ञान प्रचार करके वो साधन बता देते हैं। किसी को कहते हैं तीर्थ पर जाइए, किसी को कहते हैं व्रत रख लीजिए, किसी को हवन और यज्ञ तक की सीमित करके उसको कहते हैं कि तुम मुक्त हो जाएगा। बंदी छोड़ कहते हैं ये रास्ता मुक्ति का कोना, ये कर्म बनाने और बिगाड़ने का है। यही सोचत चित कीन हूं पुरुष वचन अस नाही, और शब्द परख दृढ़ के गह ले पहुंचा हूं ताही। अब कहते थे ना सतगुरु महाराज के एक बार ते मन में आया कि इस काल के सारे खेल ने खत्म कर दूं, किस ब्रह्मंड को समाप्त कर दूं, लेकिन फिर ये आया कि सतपुरुष का वचन नहीं है, ये आज्ञा नहीं है, और हमने ही इनको ये लोक दे रखे हैं, और हमने ही इनको, इसने हमारे से तपस्या करके लिया था तो हमने इनको दे रखा है, इस करके हम इसको अपना वचन भंग नहीं कर सकते, लेकिन जो मेरे ज्ञान न समझ कर और मेरे नाम को सार नाम को ले लेगा उसको मैं सतलोक भेज दूंगा, फिर ये काल कुछ नहीं कर सकता, ये नियम है। तो जब तक हम नियम नहीं अपनावेंगे तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। जब तक हम तीन लोक के नाम जाप करते रहेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश के, से कितना बड़ा योगी हो कितना बड़ा साधक हो, हम सतलोक नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इनके नाम के जाप का केवल स्वर्ग तक की प्राप्ति है। योगी योग द्वारा, साधक नाम द्वारा, जो संत मार्ग पर ऋषि मार्ग पर लगे हुए हैं, कुछ यज्ञ हवन करके स्वर्ग इंद्र की पदवी प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं इंद्र जो है अपनी पदवी भोग के फिर गधे की चुनी में जाता है। 100 मन की 100 यज्ञ की जावे और फिर उसको इंद्र की पदवी प्राप्त हो और 288 युग तक, 72 चौकड़ी युग तक इंद्र का राज वो जीव भोग के और फिर वापस मृत मंडल में गधे की जुन्नी में आ जाता है। अब बताइयो बंदी छोड़ क्या कहना चाहते हैं कि यज्ञ की 100 मन की यज्ञ की और 100 की, उसके बाद क्या मिला? इंद्र का राज। उसके बाद के मिला? गधे की जुन्नी। तो बंदी छोड़ गरीबदास जी कहते इंद्र दा राज काग दा बिष्टा। जब ये ज्ञान हो जाएगा, जब तेने कहे इंद्र का राज भी काग की बीट है हमारे साधक के सामने, हमारे नाम के सामने, हम तो वहां जावेंगे सतलोक के अंदर, जहां पर जाए पाछा जीव ने दोबारा इस गंदी गलगस में नहीं आना पड़ता। अब यहां पाए थे, क्या हमें मालूम था हमारे कौन बच्चे होंगे, कौन हमारे रिश्तेदार होंगे? ये सब तक जुगाड़ अपने कर्म अनुसार जुड़ता जा रहा है और मोह और प्रेम आपस में फंसता जा रहा है। इसी प्रकार इन कर्म अनुसार जो हम बता रहे हैं, जो हमारे बंदी छोड़ का असली मार्ग है, इन कर्मों के अनुसार आप सब तक वहां पर पहुंच जाओगे। इन कर्मों में लगे रहे, नियमित लगे रहे, तो आप सतलोक चले जाओगे। सतलोक की व्यवस्था बहुत सुंदर है, इसका प्रकरण करते हाना भी जो है ना रोम रोम खड़ा हो जाता है कि वहां पर कितना सुख कितना आनंद है, पर उसका असली आभास उसी को होगा जो वहां तक पहुंच लेगा। महाराज कहते हैं ब्याही से कवारी मिली और फीके पड़ गए बैन, ब्याही से ब्याही मिली फिर मिली सैन में सैन। अब कवारी लड़की को ब्याह शादी हुई लड़की अपनी वहां की बात बतावे तो वह मुंह का नहीं देखे जाएगी, और जब दो ब्याही लड़कियां आपस में मिलती हैं तो उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी प्रकार वहां का जो आनंद है सतलोक का, उस सुख को सतगुरु महाराज कहते हैं वही ज्यादा महसूस करेंगे जिन्होंने उस सुख को प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार हम आपको बताएंगे, आपका यकीन जरूर होगा कि ये वहां होकर आया है, उनको ज्ञान है तो ये बता रहा, तो बात तो यही पाओगी पर उतना आनंद नहीं आवेगा। पर सच्चाई मानना इस बात को, ये सत्य क्योंकि बंदी छोड़ की वाणी और प्रमाणी तथा आंखों देखी हम आपको बता रहे हैं। तो सतगुरु महाराज ने कहा कि काल के अधीन होकर ये जीव अमृत को तज के विष के विष से प्रेम कर रहे हैं। बंदी छोड़ कबीर साहब कहते हैं कि मैं इनके पीछे पीछे फिरता हूं, मेरी कोई बात भी नहीं सुनता। जब यह देखा कि मेरी कोई नहीं सुनता तो विचार आया कि किसी तीर्थ पर जाकर बैठूं, वहां भगत जन यानी पुण्य आत्मा ईश्वर प्राप्ति के लिए भ्रमित होकर के आ रहे हैं भ्रमवश, लेकिन वहां कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, वहां पर कोई तो सुनेगा। फिर उन्हें सोचा कि मैं बैठकर वहां अपना ज्ञान बताऊंगा। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलाप, और भाई पत्थर पानी पूजता कोई साध संत मिल जाते, कि इन समागमों में तीर्थों पर जाइएगा, हो सकता है आपको वहां पूजा पाठ पत्थर पानी पूजते हैं कोई ऐसा संत मिल जाए जो आपके कर्म न बदल दे, आपके जीवन न बदल दे। और इसलिए नहीं कहा कि आप वहां सिर्फ नान की खातिर जाइयो, ये कहते हैं कि मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलाप, और भाई साधु संत पत्थर पानी पूजता कोई साधु संत मिल जाते, हो सकता है कोई सतमार्ग दर्शक आपको मिल जाए। तो बंदी छोड़ कबीर साहब एक साधारण से भक्त का रूप बनाकर वृंदावन में चले जाते हैं। उधर से ये धर्मदास लाला जी ब्रह्मा विष्णु का उपासक अपने पूर्व गुरु रूपदास जी द्वारा बताए गए मार्ग अनुसार साधना अनुसार उसने बताया कि 68 तीर्थ नाले और एकादशी का व्रत कराया कर और गीता जी का पाठ किया कर, राम कृष्ण शंकर का जाप किया कर, धर्मदास तुझे स्वर्ग प्राप्ति होगी। धर्मदास जी अपने पता अपने पूर्व गुरु रूपदास जी की उस वाणी को सुनकर आज्ञा अनुसार अपना भजन साधन करता हुआ और वृंदावन में गया हुआ था। बंदी छोड़ ने सोचा कि इससे बढ़िया मौका और कितने नहीं। सतगुरु महाराज कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपना एक भोले से भगत का रूप बना के और वहां जा बैठे। कबीर साहब के उसको देख करके रूप को धर्मदास महाराज की दोनों आपस में आमने सामने बैठ जाते हैं और धर्मदास ने क्या कर रखा, 12 तिलक लगा रखे माथे पे, गल में कई माला डाल रखी, गीता जी साथ में, कृष्ण जी की मूर्ति सालग्राम भी से साथ ले रखा। कबीर साहब ने देखा ये क्या क्रिया करता है, सुबह स्नान किया, सालग्राम पर नहाए, उसकी पूजा करी, टीका तिलक किया, फिर आरती उतारी उस पत्थर की मूर्ति जो जोड़े में ले रहा था, बैग में रखी हुई थी, उसके बाद गीता जी का पाठ किया। फिर सतगुरु महाराज उसको देखते रहे दूर तक बैठ के और धर्मदास भी देखता रहा कि भगत देख रहा बड़े ध्यान से। थोड़ी देर में बंदी छोड़ कबीर साहब धर्मदास के पास आकर बैठ जाते हैं। उसको कहते हैं धर्मदास को, हे महात्मा, हे वैष्णव वैरागी, मैं बहुत घूम लिया हूं, मुझे सतमार्ग नहीं मिला, कृपा मुझे बताने की कोशिश कृपा कीजिए ताकि मेरा जीव कल्याण हो जावे। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास को, वो परमात्मा अपने बच्चे को निकालने की खातर काल से सुलझाने के लिए किस ढंग से अपना जो है दाव लगाते हैं, क्योंकि उन्हें सोचा कि अगर मैं इनसे सीधी बात करूंगा तो गीता का जानने वाला बहुत बड़ा विद्वान है, मेरा क्यों क्यों बात बनावेगा। तो बंदी छोड़ एक भोले से भगत के रूप में उससे बातचीत करते हैं। मथुरापुरी में पहुंचे हुए थे। महाराज सोचते हैं कि एक यदि एक आत्मा भी मुक्त होगी तो मानो 1 करोड़ गौ कटने से बच गई, इतना पुण्य होता है। एक भक्त भी सतगुरु शरण में आ गया तो उसको इतना पुण्य होगा जो उसको लेने वाला है, जैसे करोड़ गौ हत्थे माते कटती हुई बचा दी हो। यह सोचकर मैं मथुरापुरी में प्रकट हुआ, वहां एक पेड़ के नीचे बैठ गया, बहुत से भक्त आए, बहुत से प्रश्न उत्पन्न हुए, परंतु हिंदू तो राम और कृष्ण शिव आदि के अलावा और किसी की बात सुनने तैयार नहीं, और मुसलमान भाई अपने धर्म के खिलाफ एक शब्द भी सहन नहीं कर सकते थे। इस तरह जो जीव किसी से नाता रखता था
तो दूसरे की बात ऐसी लगती थी जैसे किसी ने गाली दे दी हो। सच्चाई बात को भी ऐसे महसूस करते हैं जैसे इन्होंने बहुत बुरा कह दिया। मैंने उन भक्त आत्माओं को भटकते देखकर बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु कोई ना सुने, उल्टा दोष निकालकर अपनी बात को अपनी उल्टा दोष निकालकर चले जावे। अपनी बात ना बनती दिखाई दी, तब मैंने एक सत्संग का तरीका निकाला। अपने आप शब्द साखी उच्चारण करने लग्या, क्योंकि मेरे को सतगुरु ने शब्द की शक्ति दे रखी है। जो जीव मेरी वाणी साखी शब्द आदि सुनेगा, उस पर वह वाणी जरूर असर करेगी, प्रभाव डालेगी, तथा आत्मा के ऊपर जो कर्मों का आवरण पर्दा चढ़ा हुआ है, वह धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। जो व्यक्ति जितना अधिक वाणी सुनेगा या पढ़ेगा, उसका उतना ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार कोई कपड़ा अधिक मैला हो, उसे जितनी बार साबुन से धोएंगे, उतना ही उज्जवल होता जाएगा। जो जीव इस कलयुग में जितना अधिक सत्संग सुनेगा या करेगा, उसका उतना ही स्वभाव और भाव शुद्ध होता चला जाएगा, तथा धीरे धीरे उसे असली यथार्थ ज्ञान भी हो जाएगा। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को सर्प डस जाता हो और उसके विष को उतारने के लिए गरुड़ मंत्र का उच्चारण करते हैं, उस मंत्र का उच्चारण बार बार करने से उस बेहोश लाश के ऊपर भी वो मंत्र असर कर देता है, उसको होश में ले आता है। ना तो उस मंत्र को वो सुन सकता है, ना समझ सकता है, उसके बाद भी मंत्र ने अपना कार्य कर दिया। इसी प्रकार गरीबदास महाराज की व कबीर साहेब महाराज की वाणी का असर हमारी आत्मा जो सूती पड़ी है, जिसके ऊपर कर्मों का जहर चढ़ा हुआ है, उसमें ये बेहोश है काम क्रोध मोह लोभ के अंदर, तो उसको कहते महाराज वो वाणी तार देती है। फिर ये आत्मा बहुत सचेत होकर सत्संग सुनती है। आज आप सत्संग में आए हो, आपके वो पाप कर्मों का प्रभाव बहुत ढीला हो चुका है। आपके ऊपर माया का प्रभाव है जरूर, पर इतना नहीं है जितना और व्यक्ति अंधे हुए बैठे हैं, जिन्होंने केवल उस काम से और जायदाद और औलाद से सिवाया कुछ भी नहीं दिखाई देता, वह कति अंधे कर रखे से काल ने। तो बंदी छोड़ कहते हैं कि इस प्रकार हमारी वाणी के सुनने से इस आत्मा में चेतनता आती है, परमात्मा के सुनने की, परमात्मा के पाने की बहुत ही आस्था बढ़ जाती है। तो बंदी छोड़ कबीर साहब ने के करा, जाके कहन लगे भाई भगत जी, महाराज जी मैं तो एक अनजान भक्त हूं और मेरे को कुछ ज्ञान बता दे। धर्मदास हो गया चौड़ा, बड़ा खुश हुआ कि एक भगत तो आया मेरी शरण में, और इसने मैं बड़ी अच्छी बात बताऊंगा। आप अपना ज्ञान प्रचार करने लगा, कहने लगा भाई भगत जी ऐसे करा करो, क्या जी, कि 68 तीर्थ का स्नान कर ले। कबीर साहब को बताता है वो धर्मदास भगत आत्मा, 68 तीर्थ का स्नान करो और गीता जी का पाठ करा करे। बंदी छोड़ कहने लगे मैं तो अनपढ़ हूं भाई, महाराज जी मैं तो पढ़ नहीं सकता, मैं सुना दूंगा तेरे को, मेरे साथ रह कर। महाराज बोले बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एकादशी का व्रत रखा कर, एकादशी का। अच्छा जी, हाँ भाई, ग्यास का व्रत जो रखा है उसने बहुत लाभ हो से। और जी, और कहते हैं शालिग्राम की पूजा किया कर, और भाई गुरु से नाम दिवा दूंगा अपने गुरु महाराज तेरे थे। अच्छा फिर क्या होगा, फिर तो स्वर्ग में चला जाएगा। सच्ची, बंदी छोड़ बोले हाँ पक्का आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी। बंदी छोड़ कहने लगे भाई स्वर्ग में के हो सा मन दे कति नहीं ज्ञान, सच्ची बताऊ आप साहब बताइयो, उस स्वर्ग में क्या उपलब्धि होगी, वहां पर आपा ने किस प्रकार रहना होगा। कहा कि वहां दूधा की तो नदी है, और भाई बड़े सुंदर मीठे फल, और काम धेनु गाय है, एक भाई मुंह मत काट दे, वही बात आपको वही चीज मिल जाएगी, और कल्प वृक्ष है उसके नीचे बैठ कर आप जो इच्छा करोगे वही आपके सामने वस्तु हाजिर हो जाएगी। अच्छा और के भगवान विष्णु के दर्शन करा करोगे। अच्छा फिर अब भाई कितने दिन रहेंगे वहां पे। अगवाई ने बताया सर, धर्मदास कहने लगा कि अपने किए हुए कर्म का अनुसार जितने पुण्य आप यहाँ कमा ले जाओगे उतनी देर स्वर्ग में रहेंगे, और उसके बाद फिर की जावांगे। फिर कहते माड़े कर्म नरक में जाना पड़ता है, आपा ज्यादा पुण्य कर लेंगे फिर आपा नरक में जाना है कौन पड़े, थोड़ा जाना पड़ेगा। अच्छा फिर उसके बाद कहते हैं फिर हम यहां आ जाएंगे पृथ्वी पर, और फिर भक्ति करांगे, और फिर स्वर्ग में चले जाएंगे। बंदी छड़ने बोले भाई या तो किमें ना जची बात, या तो डोले डोल से आड़े भक्ति करो, स्वर्ग में खा लो, फिर नरक भोगो, फिर लख 84 में कुत्ते के देवी बनो, फिर इस भक्ति का के सारा लग्या। तो विश्व कहता धर्मदास अच्छा बावड़ा रे, अच्छा स्वर्ग ने तो छोटी सी चीज समझता है, कितना आनंद आता है ये और वो सब पता नहीं के बताई। तो बंदी छोड़ने बोले मैंने एक सत्संग सुना था भाई धर्मदास तंग कैसे क्या कि उसमें यूं बतावे हैं कि एक लोक ईसा है जिसमें जाए पाछा जीव वापस नहीं आता, मरता नहीं, और इन स्वर्गों से असंख्य गुणा ज्यादा बढ़िया स्वर्ग ओ स्थान से। धर्मदास ने बोला कोई ऊँ बुकावा था तने उसमें कोई ना बोला कदे इसे आदमी आगे चक्कर में आ जा तो हाँ ये तो ठगनी है उसे। बोला अच्छा तो भाई नो क्या करें आपा जो ये तीर्थ पर आए सा एक बात बताना मुझे क्या कि जैसे तीर्थ पर आए आप इस पर मथुरा में और कहाँ से आए आप कि बांधोगढ़ तय कितनी दूर पड़ा सा यहाँ से कि कब लगभग 150 कोस 150 कोस और भाई वहां से यहाँ तक कैसे आए कि पैदल आया भाई मैं तो अपने श्रद्धा से आए है ना पैदल आओ तो घना लाभ उसे। अच्छा एक बात बता देख भोग तो दोनों भोगने पड़ेंगे अच्छे भी माड़े भी कहा तो यहाँ बांधोगढ़ से यहाँ तक आप आए पाया तला जीव भी मरे होंगे तेरा ना कितने कीड़े मकोड़े कहा बहुआ तो मरते तो होंगे। तो भगत जी वह तो आड़े तो लेकर लाखों जीव मार दिए तने और इस तीर्थ का एक पुण्य भोगने दोनों पड़ेंगे फिर नरक में गणे दिन रहेंगे आप तो स्वर्ग में थोड़े दिन रहेंगे। अब धर्मदास पसीने आने लग गए पर ऊपर ऊपर तो फिर बोला नहीं नहीं आप व्रत रखा है ना व्रत बहुत बढ़िया चीज है तीर्थ में नहाए तो वो पाप कट जाए। अच्छा अच्छा तीर्थ में नहाया था काल में बंदी छोड़ के ऐसे कि मेरे शरीर का ऊपर इतने जीव आ गए वह छोटे छोटे जब कति हाथा तला रगड़ गए मर गए भाई गणे मैं तो फिर नहाया नहीं कुएं बजा कर नहाया भगत जी मेरा पता नहाया भी नहीं गया उसमें नेरे जीव थे। अब धर्मदास फिर चुप हो गया एक बात तो बिगड़ गई ये बताओ उसमें नहावा जब भी पाप भगत जी और पैदल नहाना है जब पाप इसमें और इस तीर्थ में नहाए का पुण्य तो एक और पाप अनेक बता क्यों कुरपांडा छूटा ने बोला तो मेरा गुरु शायद मेरे बात पूछा है। धर्मदास बिगड़ गया भाई बंदी छोड़ना सोचिए ले वो आंख मांगली दे दी सच्ची बात कह दी आंख मांगली मार दी हो तो एकदम अंतर ध्यान हो गए आया पसीना धर्मदास कहो तिरे की यू तो भाई कि मैं और शक्ति थी और तन तो जुलम कर दिया ऐसे प्रेमी संत तय इसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से तुने कितनी राड जगाई। अगले दिन बंदी छोड़ और दूसरा रूप बना कर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और धर्मदास के करे से खाना तैयार करे सुबह सुबह उठ कर खाना तैयार करते करते वो लकड़ियां जो जला रखी थी उसने चूल्हे में उन लकड़ियों के अंदर चीटी थी थोथी थी लकड़ी उसमें चीटी ब्याई हुई थी कीड़ी पपील कीड़ी को पपील भी कहते हैं तो उसमें वह चीटी ब्याई हुई थी। जब वो जलती जलती लाकड़ी कति चूल्हे का आगी जब 1.5 बिलांत की रहेगी जब धर्मदास ने देखा वह पाछे तक काली हो रही सारी और कीड़ी निकलो थोथे मात नरी सुराखा में गए तो धर्मदास ने देखा था तने चाला कर दिया रे करोड़ों जीवों की हत्या कर करियू खाना बना लिया इस पाप ने क्यों कर दूंगा। उसी समय उसने सोची कि इस भोजन को आज मैं नहीं खाऊंगा मैं व्रत रखूंगा और ये भोजन किसी महात्मा ने खिला दूंगा। ये सोच के उस थाल ने परोस के ऊपर तन डिक के और कहां आता है जाबंदी छोड़ कबीर साहेब एक साधु के रूप में बैठे थे आकर के खड़े हो जाते हैं तो वहां बंदी छोड़ अपने मन को अप समझा रहे से और धर्मदास उनके पीछे खड़ा हो से। धर्मदास के मन में ये आवा है कि जब महात्मा अपने आप बोलते हैं उस समय वो कोई खास रजा की बात कह रहे होते हैं ध्यान तो सुननी चाहिए। धर्मदास जी उस महात्मा बंदी छोड़ कर पीछे जाकर खड़े हो जाते और धर्मदास कबीर साहब अपने मन को अप संबोधित कर रहे हैं। उन्हें तो बेरा था कि कौन पीछे खड़ा से पर धर्मदास ने सोचा था कि इतने कोई नहीं देखता तो बंदी छोड़ कबीर साहब ये शब्द गा रहे हैं अपने मन ने अप समझा रहे से कहते हैं रे मन तो मैंने कहां ले आया भाई देख इस तीर्थ का ऊपर लिया इसमें जंतु रहे जीव रहे ये मरे खपे ये को नहीं पा रहे होंगे भगत जी। कहते हैं मन मान सरोवर नान रे
जल के जंतु रे जल माही आठों बखत बिहान रे आठों बखत बिहान रे मन मान सरोवर नान रे जल के जंतु रे जल माही आठों बखत बिहान रे
के भाई मन नुक है मान सरोवर नाया करे। ऊपर जो सरोवर है सतलोक की तरफ चलते हैं ना, इस मृत मंडल में भी 21 ब्रह्मांड के अंदर भी मान सरोवर है, इनसे ऊपर सतलोक में भी मान सरोवर है।
कहते हैं मन मान सरोवर नान रे जल के जंतु रे जल माही आठों बखत बिहान रे लख 84 जल के बासी ये भुगत चारों खान रे चेतन ओ कजड़ को पूजय गांठ बंद पासाण रे।
आप कह रहे हैं देखी से मूर्ख साम, ये लख 84 जल के वासी कितने जीव जंतर समुद्र में रहे तीर्थों में रहे जिनमें हम ना कर मुक्ति चाहूं वह कोई ना पा रहे होंगे भाई, और देख चेतन होकर जड़ को पूजे गांठ बांध पाषाण रे। आप तो बोल रहे चाल फिरे और पत्थर की मूर्ति पर पानी गेर करने कहे हमने पार करिए भगवान। कहते हैं
भाई मरकट कहां चंदन के लेपे क्या गंग नवाए समान रे अर सुदी हो न पूछ तास की वो छोड़ को न बाण रे।
बंदी छोड़ने कहे कि गधे न नुआ दे गंगा में, गधे का मरकट ये चंदन लेप दे कि असर करेगा गधे का, उसमें कोई अंतर नहीं आओगा। और कुत्ते ने गंगा में नुआ न्योकी ने तो पुछड़ बांगी रहेगी और छोड़ दे हाड चाबेगा। यानी उस गंगा के नहाते अगर इसने बाण कुछ बदल दी हो इसके कर्म कट जा तो तू अपने कटे समझ लेना।
भाई मरकट कहां चंदन के हिले पे क्या गंग नवाए सवान रे सुदी हो ना पूछताछ की वो छोड़त नाही बाण रे छोड़े नाही बाण रे। द्वादश कोट जहां जम किंग करे बड़े बड़े दैत हवान रे धर्म राय की दरगा माही ओ रही खेचाताण रे फेरे ओ री खेचाताण रे।
मंदी छोड़ने के भाई इन फंडा के कारण तय धर्मराज के दरबार में त्रिसी कुटाई होगी याद रखेगा। ये कोनी करण के काम इन तक कोई मुक्ति नहीं होंगी, कर्म ज्यादा बिगड़े से और बढ़ते नहीं भाई। और कहे द्वादश कोट जहां जमकिंकर बड़े बड़े दैत्य